سمے سار گاتھا 281-82. سنتپت مانس شانت ہوں جن کے گروں کے گان میں تمام مہان جن بچرے جگت کلش میں یہ بات کہہ دی تھی کہ اجانی آتما سوبھاؤ کو نہ جاننے کے کارن راگادی بھاووں کا کرتا ہوتا ہے. تب اسی بات کو گاتھاؤں میں کہتے ہیں, کیونکہ یہ کلش واستو میں ان گاتھاؤں کی اتھان کا روپ ہی کلش تھا. اب گاتھائیں پڑھیں, پڑھو. راگمیہ دوشم
کسائے کمے سوچے وجے بھاوا تے ہندو پریڑمنتو راگا دیوندری پڑو گی. راگمی ہے دو سمیہ کسائے کمے سوچے وجے بھاوا تے ہندو پریڑمنتو راگا دیوندری چیتا. راگ دیس کسائے کرموں کے ادے میں بھاو جو ان روپ پرت جیو پھر راگادی کا وندن کر. راگ دیس کسائے کرموں کے ادے میں بھاو جو ان روپ پرت آتما راگادی کا وندن کرے.
یہ دو گاتھائیں لگ بھگ سمان ہیں. دھیان دیں تو ڈیڑھ پنکتیاں تو دونوں کی بالکل ایک سی ہیں, اور انتم پد میں پہلی گاتھا میں 81 گاتھا میں ہے بندھدی پنوبی, اور اس میں ہے بندھدے چیدا. بس اتنا انتر ہے, باقی کی بالکل ایک سی ہے. بھاو بھی لگ بھگ دونوں کا ایک سا ہی ہے کہ اجانی کس پرکار کرموں کو باندھتا ہے. تو کہتے ہیں راگ میں دویس میں, یہ راگ دویس کسائے کرم ہیں, ان میں جب اے آتما ان روپ پرنمت ہوتا ہے, پہلے کرم کے ادے سے اور برتمان میں وہ نئے نئے راگوں کو اتپن کرتا ہے. مطلب درب کرم کو بیچ میں انہوں نے تھوڑا گون کیا ہے, لیکن ابھی ٹیکا میں آگے لے لیا ہے. یہ کہتے ہیں پرانے کسائوں سے راگ دیش کے کرموں کی پرکتیوں کے بھید بھی ہیں. یہ راگ دیش شبد نہیں ملیں گے آپ کو, لیکن کسائے میں تو کرودھ مان مایا لوبھ یہ کسائے کی پرکتیوں کے نام ہیں, مرتھات وغیرہ سب. تو کہتے ہیں ان کے ادے میں جو آتما میں موہ راگ دیش کے بھاو ہوتے ہیں تو ان سے پھر یہ آگے کرموں کو باندھتا ہے. مانے پرانے کرم کے ادے موہ راگ دیش ہونے میں نمت ہیں, اور پھر موہ راگ دیش نئے کرموں کو باندھنے میں نمت ہیں. ایسے نمت نیمتک سمبند ہے. اسی سمے سال میں ایک جگہ تو ایسا کہا ہے کہ وہ بیچ میں درب کرم کو گون کرو نا, تو پرانے راگ دیش ہی نئے راگ دیش کے کارن ہیں. اور ایک جگہ ایسا بھی آیا ہے راگ دیش کو بیچ میں کیوں لیتے ہو, پرانے موہ راگ دیش روپ بھاووں سے کے ادے سے اور نئے گانا ورنا یہ کرم بن جاتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سہج نمت نیمتک سمبند ہے, کرتا کرم سمبند نہیں ہے. دونوں میں یہی کہا ہے دیکھو کہ راگ دیش سارے کرموں کے ادے میں جو بھاو ہوتے ہیں, اوپر تو ادے شبد ہے ہی نہیں گاتھا میں, ہے نا. ان روپ پرنت جیو پھر نئے راگادی کا بندھن کرتا ہے. تو راگادی کا بندھن کیا کرتا ہے؟ بندھن تو درب کرموں کا ہوتا ہے, भाव कर्मों का थोड़ी बंधन होता है। तो रागादी का बंधन करना कहते हैं तो द्रव्य कर्म आ गया ना। तो वो कहते हैं कि जो पुराने मोह राग देश हैं उनसे नए द्रव्य कर्मों का बंधन करता है, और भी पुराने जो राग देश थे वो उसके पुराने द्रव्य कर्मों के उदय से हुए थे। बस ये पहली गाथा में लिखा पुणोभी माने ऐसी परंपरा चलती रहती है फिर बंद करता है। पुणोभी माने पहले उदय आए, फिर पहले कर्म का उदय आया राग देश में हुए और उनसे फिर कर्म का बंध करता है, ये पुणोभी का अर्थ है। और नीचे लिखा है कि बंध दे चेदा, चेदा माने आत्मा और बंध दे माने बांधता है। ऐसे बिल्कुल भी अंतर इन दोनों में नहीं है। देखो अपन पढ़ते हैं ना नीचे, उक्त दोनों गाथाएं लगभग एक सी ही हैं, इनमें मात्र इतना ही अंतर है कि प्रथम गाथा में अंतिम शब्द है बंधदि पुणोभी और दूसरी गाथा में उसके स्थान पर बंध दे चेदा शब्दों का प्रयोग किया गया है। शेष दोनों गाथाएं समान ही हैं। उक्त शब्दों में जो अंतर है उनके अर्थ में कोई विशेष अंतर ख्याल में नहीं आता। तात्पर्य है कि दोनों गाथाओं का भाव लगभग एक ही है। आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में दूसरी गाथा की उत्थानिका में ततः स्थितम एतत् लिखकर उक्त बात की ही पुष्टि करते प्रतीत होते हैं। देखो यह संस्कृत देखें, उसमें पुरानी समय सार में ये गाथाएं अलग अलग होंगी, अपन ने क्योंकि एक सी होने से इकट्ठी की हैं, तो उसमें जो संस्कृत में ततः स्थितम एतत् ये है ना, वो दूसरी गाथा के ऊपर उत्थानिका के रूप में होगी और बाकी का अंश नीचे टीका के रूप में होगा। समझे ना, यानी वो ऊपर जो बात कही है उसके बाद कहते उससे ये नक्की हुआ, और ऐसा कह के जो ऊपर बात कही थी उसी को उन्होंने दोहरा दिया है ना। उन्होंने बहुत संक्षिप्त में टीका लिखी है उन्होंने अमृतचंद ने इसकी, है ना, ठीक है ना। लिखकर उक्त बात की ही पुष्टि करते प्रतीत होते हैं, क्यों कि अभी और क्या कहेंगे, गाथाएं उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, लिखी हैं, तो उन्होंने ऐसा कह करके इससे ये नक्की हुआ। जयसेन भी क्या करते हैं, उनने भी लिख दिया देखो तमेव अर्थम दृढ़यति, उसी बात जो हमने पीछे गाथा में कही है उसको और मजबूती प्रदान करते हैं। दृढ़यति मैंने उसे मजबूती से कहते हैं। इस प्रकार दोनों गाथाओं का भाव लगभग एक सा ही है। यहां नीचे देखो, यद्यपि आचार्य जयसेन ने भी इन गाथाओं का अर्थ आत्मख्याति के अनुसार ही किया है, तथापि किंच विस्तरः लिखकर एक बात की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया है। किंचे बिस्तरा, किंचे बिस्तरा मैंने बिस्तर लगा दिया ऐसा नहीं, किंचे माने दूसरी बात यह है जो थोड़ी सी विस्तार से हम कहते हैं, है ना। क्या कि जहां हम राग द्वेष मोह शब्दों का प्रयोग करते हैं वहां मोह शब्द का अर्थ मिथ्यात्वादि जनक दर्शन मोह लेना चाहिए और राग द्वेष शब्दों से क्रोधादि कषायों का उत्पादक चारित्र मोह लेना चाहिए। यानी मैंने कल बता दी थी ये बात कि जो अपन बार बार गहराते हैं ना कि 25 कषायें राग द्वेष रूप ही हैं, वो यहां पर जयसेनाचार्य ने अपनी मूल संस्कृत टीका में लिखी है। किसी को आगम प्रमाण चाहिए हो तो उनके लिए यहां उपलब्ध है। यहां शिष्य प्रश्न करता है कि मोह शब्द से मिथ्यात्वादि का जनक दर्शन मोह लेने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु राग द्वेष शब्दों से चारित्र मोह को कैसे लिया जा सकता है। शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य देव कहते हैं कि चारित्र मोहिनी कर्म दो प्रकार का होता है, कसाय वेदनीय और नो कसाय वेदनीय है। ये सब जरा नए सुन रहे हो गए, हालांकि तत्वा सूत्र में ये सब बातें हैं। कसाय वेदनी माने 16 कसाय हैं और नो कसाय वेदनी माने 9 कसाय है ना। कसाय वेदनी नामक चारित्र मोह में देश के उत्पादक होने से क्रोध और मान देश रूप हैं, तथा राग उत्पादक होने से माया और लोभ राग रूप हैं। नो कसाय वेदनी नामक चारित्र मोहिनी में राग उत्पादक होने से स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, हास्य और रति, ये 5 नो कसाय राग रूप हैं, और देश की उत्पादक होने से रति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 4 नो कसाय द्वेष रूप हैं। इस प्रकार के अभिप्राय से मोह शब्द से दर्शन मोह यानी मिथ्यात्व कहा जाता है और राग देश शब्दों से चारित्र मोह कहा जाता है। यह बात सर्वत्र ही जानना चाहिए। इसमें ज्यादा व्याख्यान करने को कुछ है नहीं, क्यों अपनी पंचकल्याणक पत्रता महोत्सवों में और कई प्रकरणों में इस बात को 25 दफे कहते रहे हैं कि 25 कसायों को हम 2 भागों में बांट दें तो ये राग और द्वेष में आ जाती हैं, और भेद करें तो 25 कसायें हो जाती हैं। उसी बात को जयसेनाचार्य ने यहां पर अपनी टीका में लिख दिया है। बस इतनी सी बात है कि कोई आदमी इसमें विवाद करे तो आप बता सकते हैं कि देखो जयसेनाचार्य की टीका में 281-82 जो गाथा है उनकी टीका में जयसेनाचार्य ने ये ऐसा भेद किया है। बस अब इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कुछ कहने के लिए, है ना। अब जो प्रकरण बदलता है एकदम, अब कल से आप जो पाठ करें गाथा का वो 283 से करना शुरू, और कलश तो उसके बाद है ही नहीं, तो इसी के बाद के कलश करना, क्योंकि अब ये प्रकरण यही चलेगा। तो मेरा भरोसा है कि एक बंद अधिकार अपन देवलाली जाने के पहले 7 तक इसे समाप्त कर लेंगे। अब आगामी गाथाओं द्वारा यह समझाते हैं कि भगवान आत्मा रागादि भावों का अकारक किस प्रकार से है। भगवान आत्मा रागादि का कर्ता नहीं है, वो बता दिया था, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। अब उसी बात को विस्तार से आगे बात करते हैं। आपने देखा होगा और जो बड़े बड़े शास्त्र आपने पढ़े होंगे तो अम्बे चंद्राचार्य अथवा और बड़े आचार्य हुए हैं जो अकलंग देव वगैरह, जब ऐसी गाथाएं आती हैं कि जो बहुत सरल होती हैं तो वे रिपीट नहीं करते हैं, बहुत से बहुत इतना लिख देते हैं सुगमम एतत् कि ये तो बहुत सरल है, बस खत्म। इतनी टीका, किन्हीं गाथाओं की टीका इतनी आपने देखी है क्या? सुगमम एतत्। कुछ लोग इतना भी लिखने की जरूरत नहीं समझते। ये जो जयसेनाचार्य की टीका में अधिक गाथाएं मिलती हैं और अम्बेचंदाचार्य की टीका में कम गाथाएं मिलती हैं, उसमें एक कारण ये भी हो सकता है। 2-3 कारण तो सुबह के वो टीवी वाले व्याख्यान में तुमने सुने थे, लेकिन एक कारण ये भी हो सकता है, और वो क्या कारण है कि उनको इतनी सरल लगी कि अम्बेचंदाचार्य ने उन पर कुछ लिखना जरूरी ही नहीं समझा। इसलिए टीकाकार ने, क्योंकि उन्होंने आत्मख्याति की मुख्यता से किताबें लिखी, बाद में जो लिखी गई ना, तो चूंकि उन पर आत्मख्याति टीका नहीं थी तो उनने उस ग्रंथ में से वो गाथाएं ही निकाल दी, है ना। और चूंकि जयसेनाचार्य ने उन पर टीकाएं लिखी इसलिए वे उसमें टीका में से नहीं निकल पाई। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि वे गाथाएं इतनी सहज और सरल हैं और आगे पीछे के प्रकरण में वो बात सब स्पष्ट हो जाती है, फिर कोई रिपीटेशन मात्र लगता है। ख्याल में है ना। अपनी ये जो टीका है, अनुशीलन तो है, ये टीका जो किताब आपके पास है, तो इसमें और सब कई विशेषताओं के साथ में एक विशेषता ये भी है कि जैसे इनकी टीका में जो गाथाएं हैं वो पुरानी जो टीका है ना अपनी जयचंद जी छाबड़ा की, उसमें बे गाथाएं नहीं है, और इस टीका में आपको बे गाथाएं भी देखने में मिल जाएंगी, पर बीच बीच में वो गाथाएं भी आई हैं। तो जो हम चाहते हैं कि हमको वो गाथाओं का भी स्वाध्याय हमारा होना चाहिए, तो वो इस टीका में आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब वो ये कह रहे हैं कि भगवान आत्मा रागादि भावों का अकारक कैसे होता है। अभी देखो वहां तो बात चलती थी अज्ञानी आत्मा और ज्ञानी आत्मा, अब इनने यहां ज्ञानी और अज्ञानी का भेद नहीं किया। अब वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात करते हैं ना, ऐसा कॉमन आत्मा लिया कि जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मझार, तो उसमें फिर वो नए लगाकर घटित करेंगे। वहां तो उन्होंने अज्ञानी अज्ञानी माने यही अपेक्षा लगा दी, जो कहते अज्ञानी आत्मा रागादेक का करता है और ज्ञानी आत्मा रागादेक का करता नहीं है। यदि इसी बात को नए लगाकर कहेंगे, क्यों नहीं, यदि अपेक्षा लगाकर बताएंगे तो कैसे बताएंगे? कोई बता सकता है? जिसने नए चक्र ढंग से पढ़ा होगा वो बता सकते हैं सभी। क्यों, कोई हटाता है हाथ? ये बात की तो यही बात है, लेकिन बस उसको अपनी नयों की भाषा में अपेक्षा की भाषा में व्यक्त करना है। ये कहेंगे ये भगवान आत्मा अज्ञान की अपेक्षा से अज्ञान अवस्था में रागादेक का करता है और ज्ञान अवस्था में रागादेक का करता नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं है? ये भी कह सकते हैं कि व्यवहार नए से करता है और निश्चय नए से करता नहीं है। ये भी कह सकते हैं किसी अपेक्षा करता है और किसी अपेक्षा करता नहीं है, समझे ना? और ऐसा भी कह सकते हैं करता भी है और अकर्ता भी है, समझे ना? माने एक ही बात को अनेक तरह के तरीकों से कही जा सकती है। यदि आप इसको बहुत चतुराई से यदि अध्ययन कर लेंगे नए चक्र का, तो कोई भी बात कहेगा और आप समझ जाएंगे कि उसका वही अर्थ है, इनमें कोई मतभेद नहीं है, और अन्यथा आप उलझते रहेंगे वहां तो कहा है कि किसी अपेक्षा करता है या किसी अपेक्षा करता नहीं है, और यहां तो कहा है कि करता है ही नहीं, लेकिन यहां निश्चय न लगा दिया ना। एक बात और समझ लो, निश्चय न लगाया हो माने न लगा दिया हो तो ही लगाना अनिवार्य है, नहीं भी लगाओ तो समझ लो लगी हुई है, और न नहीं लगाया हो आपने तो भी लगाना अनिवार्य है, और नहीं भी लगा पाए हो तो लगी हुई है। संबंध भद्र कहते हैं ना, क्योंकि हम सैदवादी हैं ना, तो कहीं छंद के अनुरोध से जगह नहीं हो और हम नहीं लगा पाए तो भी तुम लगी हुई ही समझना, समझे ना? अब ये क्यों है ऐसा? बोलो क्या नाम, कमल चंदी कि नए में जो है ना, नए लगा दिया हो तो ही लगाना अनिवार्य क्यों है, और नहीं लगाया हो तो भी लगाना अनिवार्य क्यों है? तो वो कहते हैं कि जिस अपेक्षा से बात कही जा रही है उस अपेक्षा में दृढ़ता प्रदान करने के लिए ही लगाना बहुत जरूरी है। तो उसमें भी कोई नहीं नहीं नहीं, नहीं वो है भी करता है भी नहीं भी है, ऐसा नहीं। भगवान दिव्य दृष्टि से नित्य ही है, ऐसा नित्य भी है नित्य भी, ऐसा न कर दिया जाए। तो यदि उनने यहां पर अपेक्षा भी लगा दी और वहां भी लगा दे तो हो जाएगा कबाड़ा, और यदि नहीं लगाई है यहां अपेक्षा तो फिर भी लगाना जरूरी है। ये जो भी लगाते हैं ना, उसे अपने न्याय की भाषा में प्रमाण सप्तभंगी कहते हैं, और जहां ही लगाते हैं उसे नए सप्तभंगी कहते हैं। स्याद अस्ति स्याद नास्ति और स्याद अस्तैव, ऐसा प्रयोग करते ना, अस्थैर नास्थैर, वो ये सामान्य बातें हैं। अभी जरा अभी शिविर खत्म हो गया ना, तो विद्यार्थियों की दृष्टि से थोड़ी ये विशेष बातें मैं बता रहा हूं। आप लोगों को थोड़ा सा कठिन लगे तो थोड़ा धैर्य रखना, लेकिन जानने लायक बातें तो ये सभी के लिए हैं, जिससे वो इसमें भटके नहीं। ख्याल में आई ना, इसके लिए ऐसी बात नहीं है कि आपको बेकार की बातों में उलझा रहे हैं, अत्यंत उपयोगी बातें हैं ये, है ना, समझ लो। अभी पढ़ो वही गाथाएं। अपडिकमणम दुहिहम
अपचखाणम तहेव विन्नेयम एदेणुपदे सेणय अकार गोवर्णिदो चेता अपकमणम दुहिहम दव्ये भावे अपचखाणम पि एदेणुपदे सेणय अकार गोवर्णिदो चेता जावं अपकमणम अपचखाणं च तव भावाणं पोपदियादातावं कत्तासो होदिरादभो ए दुविदया प्रतिकमणैव दुविद है आत्यागे भी इसलिए देव ने त्याग अपतिकमण दोनों दुविध है दव भाव से इसलिए जिन देव ने अकारक कहा है आत्मा द्रव भाव से त्याग अपतिकमण होवे जब तलक तब तलक यह आत्मा करता रहे यह जानना।
ये दूसरी पंक्ति में तकलीफ हो रही है ना बोलने में है? अभी जिन देव की जगह जिनवर देव कर दूं तो सही हो जाएगा, अर्थ दोनों का एक ही रहेगा तो तुम्हारा छंद में दिक्कत नहीं आएगी। अब पढ़ो जिन देव की जगह जिनवर देव करके
इसलिए।
अरे ऊपर से एक पंक्ति का लोप क्यों करते हो?
हे द्विद अप्रतिकमण एवं द्विद है आत्याग भी इसलिए जिन वर देव ने अकारक कहा है आत्मा आत्याग अप्रतिकमण दोनों द्विद है द्रव भाव से इसलिए जिन वर रक कहा है आत्मा भाव से आत्याग अप्रतिकमण होवे जब तलक तब तलक यह आत्मा करता रही यह जानना।
अकारक में जो आ है ना उसके लिए वो जगह बचा करके जिनवर देव की जगह जिनदेव किया गया है। यदि आप इसे जल्दी बोल देंगे तो अकारक बोलने में आपको असुविधा नहीं होगी, और यदि यहां जिनवर देव लगा देंगे तो वो तकलीफ फिर वो अकारक में खड़ी हो जाएगी। इतना एक अकारक में एक अक्षर है आ, और जिनवर देव में दो मात्राएं हैं ना, बर 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 लगाने से। अब एक मात्रा उसमें घटती है एक मात्रा बढ़ती है, इतना सा फर्क है। अब देख के बोल करके ढंग से इसको और तैयार करके लाना, तो मेरे पास घर आ जाना, फिर अपन देख के इसे पढ़कर नक्की करेंगे क्या रखना, फिर कल उसका पाठ उस तरीके से करना। ख्याल में आई ना? देखो ये कुंद कुंद की विचित्र भाषा है। दो प्रकार का अप्रतिक्रमण है और दो प्रकार का अप्रत्याख्यान है। अत्याग माने अप्रत्याख्यान, त्याग माने प्रत्याख्यान होता है। अप्रत्याख्यान भी दो तरह का है और अप्रतिक्रमण भी दो तरह का। एक प्रतिक्रमण नहीं है, ध्यान रखना, अप्रतिक्रमण है, और प्रत्याख्यान नहीं है, अप्रत्याख्यान है। इसलिए जिनदेव ने आत्मा को अकारक कहा, वैसे कैसे लगता है क्या हो गया, दो प्रकार का प्रतिक्रमण है, दो प्रकार का प्रत्याख्यान है, तो इसमें से कौन सी बात आ गई कि जिसकी वजह से आत्मा को आकार कह दिया? यही मैं आपसे कह रहा हूं। तो मूल भाषा में देखो आप, अप्रतिक्रमण दुभ्यम अप्रत्यक्षानम तही विभिन्नयम ये दे उपदेशेण अकारगो बंधो चेदा। इस उपदेश से भगवान आत्मा को अकारक कहा है। माने वो मैंने पद्यानुवाद में कुछ भी बदला बदली नहीं की है, वो बिल्कुल मूल गाथा में ऐसा ही है। अब उसे हम समझना पड़ेगा अर्थ हमको गंभीरता से, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कैसा अटपटा है कि हम कहते हैं कि अप्रत्याख्यान दो तरह का है, अप्रत्यक्षान दो तरह है, इसलिए आत्मा अकारक है। अरे उनके दो तरह के होने से आत्मा के अकारक होने का संबंध क्या है? ऐसे फिर दूसरी गाथा में भी है, अप्रतिक्रमण दो प्रकार का है, द्रव्य प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण, वही भेद गिना दिए। और अप्रत्याख्यान भी दो प्रकार का है, द्रव्य प्रत्याख्यान और भाव प्रत्याख्यान, और इसलिए आत्मा अकारक कहा है। फिर भी वही बात है, ऊपर में इसमें फर्क क्या है? वहां दो प्रकार कहा था, पर नीचे की गाथा में वे दो प्रकार गिना दिए हैं और फिर उसी बात को रिपीट कर दिया कि इसलिए भगवान आत्मा अकारक है। अब जब तक अप्रतिक्रमण अप्रत्याख्यान द्रव्य और भाव, माने द्रव्य अप्रतिक्रमण और भाव अप्रतिक्रमण, द्रव्य प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान और भाव अप्रत्याख्यान, ये आत्मा कर्ता कुब्बदी आधा ये दबा, जब तक आत्मा ये कर रहेगा ऐसी पोजीशन में, तब तक कत्ता शो हो ना दबो, तब तक वो करता रहेगा ऐसा जानना चाहिए। ये गाथाओं का अर्थ सीधा सच्चा अर्थ है। ऐसी स्थिति में हमको अमरचंद्र का जयसेन का महत्व तो बढ़ जाता है कि वो ऐसी बात में फिर वो क्या अर्थ करते हैं। हमारे लिए उनका महत्व तो बढ़ जाता है और उनके लिए इसका अर्थ करने में बहुत बड़ी कठिनाई खड़ी हो जाती है, और उन्हें अपना उपयोग लगाकर तर्क युक्तियां लगाकर उन्हें वो अर्थ आपको बताना पड़ता है। क्या है ना, इसलिए अपन कहते हैं कि यदि अमरचंद ने टीका नहीं लिखी होती और जयसेन ने टीका नहीं लिखी होती तो हमारे पास ये बात, हमारी इन गाथाओं का अर्थ हमारी समझ में नहीं आता, और आ भी जाता और हम उसे अर्थ कर भी देते जो इसमें लिखा है वोई, तो भी आपके चित्र में शंका खड़ी रहती, क्योंकि जितना वजन अमृतचंद्र का और जयसेन का है उतना हमारा नहीं। आपके दिमाग में ख्याल में ही ना, वो हमेशा एक तकलीफ खड़ी रहती, और उस समय जो उनकी बराबरी के आचार्य होंगे और जिनकी दृष्टि में अमृतचंद्र की इतनी महिमा नहीं होगी, देव उस वक्त ऐसी बातें करते भी रहे हों तो आश्चर्य नहीं है। क्यों? एक बहुत बड़े आचार्य ने ऐसा कहा था कि समय सार तो बहुत सरल है, लेकिन अमृतचंद्राचार्य ने उस पर इतनी कठिन टीका लिखकर उसे द्रूह कर दिया है। ये शब्द उनके हैं पूरे, क्या और अखबारों में आई थी वो बात, और गुरुदेव ने पढ़ी तो वो बहुत हंसते थे और बार बार इस बात को कहते थे कि तुमको ये सरल दिख रहा है। बोलो, अब ये गाथा तो सरल है ही ना कि वो दो प्रकार का बोध प्रकार, इसलिए आत्मा करता है, वो तो दिख रहा है ना मतलब, लेकिन उसका भाव क्या है ये जब तक नहीं बैठेगा आगम के अनुसार, तब तक वो उसका सरलता का क्या मतलब है? मैं आपसे कहेंगे साहब आप हमारे यहां पंच कल्याणक में अवश्य अवश्य पधारना, तो मैं कहूंगा अप्रत्याख्यान दो तरह का होता है और प्रतिक्रमण दो तरह का होता है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। फिर क्या होगा बोलिए? समझ रहे ना, ऐसा सरल है, वो भाषा की दृष्टि से सरल है, भाव की दृष्टि से अत्यंत कठिन है। एक जगह नहीं, कई जगह ऐसी बातें हैं ना, जैसे व्यवहारेण बदस्यति जीवस्य चरित्र दंशनम नाणम और नभी नाणम न चरित्रम न दंशनम जानगो शुद्धो। व्यवहार ने कहता है कि आत्मा के ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, और फिर न ज्ञान है, न दर्शन है, चारित्र है, इस निश्चय नहीं कहता। अब न ज्ञान है क्या नहीं है, कैसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा लिख दिया ना, न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। अब यहां पर वो ज्ञान, दर्शन, चारित्र तीनों हैं, अभेद रूप से हैं, और उनके भेद का निषेध है। ये कौन बताता, मैं आप बताऊं, हम मैं चंद्र नहीं होते तो हम, अपन तो यहां कहते हैं अपन को तो गुरुदेव नहीं होते तो कौन बताता। और वे लोग जो लोग ऐसी बातें करते हैं, सचमुच उनकी दृष्टि में समय सार का मर्म नहीं आया है ख्याल में। ये कोई हम कोई आलोचना नहीं कर रहे और ना अभिमान कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति वास्तव में ऐसी है। दिल्ली में गुरुदेव श्री पधारे थे और वो रोजाना एक दो मंदिरों के दर्शन करने जाते थे सुबह। तो एक दिन जिस मंदिर में जा रहे थे उस मंदिर में ज्ञानमती माता जी का चौमासा था शायद, वे वहां ठहरी हुई थी, तो उन्हें पूरी तैयारी की थी कि यहां अपन उनसे चर्चा करेंगे। तो ऐसा वो बीच में जो मंदिर के बीच में चौक होता है ना, उस चौक में उन्होंने अच्छी खूब लंबी स्टेज लगा के और उस पर बैठकर, और वे ऊपर तो वो बैठ गई थी और नीचे कोई कुर्सी मुर्सी कहीं कुछ रखी नहीं थी, और ऐसी सब तैयारी से वो बैठी थी। जब कुछ गुरुदेव श्री उस मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे थे तो मैं भी वहां अपने थे ना सुरेंद्र कुमार जी, ताऊ जी बोलते, उनके घर ठहरा था। तो किसी का मेरे पास फोन आया कि उसमें वो गुरुदेव जा रहे हैं और वहां ज्ञानमती माता जी पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं, तो आप दौड़ के वहां जाओ और उस पर आप वहां उपस्थित रहना, नहीं तो कुछ न कुछ हो सकता है। तो हम पहुंच गए, वहां पहुंच गए, अब गुरुदेव श्री दर्शन करके आए और फिर वो निकले माता जी ने, इधर आओ। तो वहां चले गए, तो वो वहां ऐसे खड़े हो गए क्योंकि बैठने की तो कोई जगह थी नहीं, उनकी उम्र ऐसी नहीं थी कि वो जमीन पर बैठ सकें, बैठ जाते तो फिर उठ नहीं पाते। अषाढ़ के महीने की दुबी गाय के समान होती है हमें बुढ़ापे की हालत, हम भी नीचे बैठ जाए तो फिर खड़े नहीं हो सकते आसानी से, फिर दो आदमी को उठाना पड़ता है, मैंने किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है तब खड़े हो सकते हैं। इसलिए बैठने का तो सवाल नहीं था, जमीन पर बैठने का कोई श्रोता लोग बैठे होते तो बैठ भी जाते, कोई था ही नहीं, बरसात भी नहीं थी, तो उनके पास खड़े होने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये उनका चाहे विवेक कह लें, ज्ञानमती जी का चाहे अविवेक कह लें, कि जब भी किसी उनसे बात करना चाहती थी तो वहां उनके लायक बैठने लायक व्यवस्था भी होनी चाहिए थी ना। तो वे गुरुदेव ऐसे चारा लेके उसी स्टेज का जिस पर वो बैठी थी ऐसे टिक के ऐसे खड़े हो गए और हम भी जाके बगल में खड़े हो गए सब। अब उन्होंने ज्ञानमती माता जी ने बोलना शुरू किया, इसका फलानी गाथा का क्या अर्थ है, यहां से क्या है, यहां से क्या है, ऐसे क्या है, ऐसे क्या है, ऐसा। तो वो गुरुदेव बिल्कुल नीची निगाह किए, उनकी आंख से आंख नहीं मिला रहे थे, और वो कहें माता बाद में बात थी पार पड़े एम नथी, बहुत गंभीर अर्थ है, बहुत गंभीर है, गंभीर है, खड़े खड़े ऐसी बात नहीं हो सकती, वो समझना हो। नहीं, हमने भी स्वाध्याय किया विज्ञानमती बोलते, हमने भी पढ़े हैं, हम भी जानते हैं, हम भी उसकी गंभीरता को जानते हैं, आप बोलिए तो नहीं नहीं माता, नहीं माता, ऐसे ही कहते रहे क्या बोले। और बस फिर थोड़ी देर में हमसे बोले चलो, और उसके चले जाए, हम निकल आए, हम बड़े 30 मार खां बन के गए थे لیکن کوئی ضرورت ہی نہیں پڑی. وہ اتنے مہاپرش تھے اپنے طریقے سے کسی چیز کو نمٹنا ہو تو جانتے تھے, کیسے کوئی زبردستی لڑ لے گا. ٹوٹے مجھے لکھا نا کہ سامنے والا لڑے گا لیکن ہم نہیں لڑیں گے تو کیا کریں, ایسا لکھا ہے. ایسا انہوں نے کہا کہ تم ایسی بات کہہ رہے ہو تو جھگڑا ہو جائے گا. تو انہوں نے کہا ہم کیا کریں, یدی ہم شراب کا نشید کریں, ٹوڈمل جی کے ساتھ بول رہا ہوں موسم پرکاشک میں, اور کلال کو برا لگے, کلال سمجھ گئے, اور جوا کا نشید کریں تو جواری کا اڈا چلانے والے کا کو برا لگے, کیوں تو ہم کیا کریں, ہم تو نشید کیے بنا رہ نہیں سکتے. جو بھی آتمارتھی ہمارے پاس آئیں گے تو انہیں بتائیں گے کہ یہ بہت گندی چیزیں ہیں, اس میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس میں یہاں تک لکھا ہے کہ یدی کوئی بیسیا سیون کا نشید کرے اور بیسیا کو برا لگے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم تو کہیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی آپ سے لڑیں گے کون, کلال اور وہ جو تین آدمی ہو گئے نا, جواری جمع اڈا چلانے والے وہ بیسیا ہیں, وہ آپ سے لڑیں گے. تو انہوں نے بہت سرلتا سے کہہ دی بھائی لڑیں گے لیکن ہم تو لڑے نہ ہی ہم تو نہیں لڑیں گے, انہیں لڑنے دیں. لیکن آپ کہنا بند نہیں کرو گے, کہنا بند کیسے کر سکے ہیں, کیونکہ یہ تو بہت خطرناک ہے نا. ہمارے جو ہمارے موکشو بھائی ہیں جو جینی ہیں ان کے لیے ان کا تیاگ تو ہونا ہی چاہیے نا, تو ان کا تیاگ کی بات تو ہم کریں گے ہی, ہم تو ان کے شترو ہیں نہیں ہیں. بے ہمیں اپنا شترو مانے تو من ہمیں ڈر لگا تھا نہ معلوم کیا ہو جائے گا, نہ بولے کیا ہو جائے گا. ان نے کہہ دی نا کہ بہن ایسے کھڑے کھڑے اتنی گہری تتو چرتا سمبھو نہیں ہے. اب کتنی ترکیب سے ان نے کہہ دیا کہ یدی ہم سے چرچا کرنے تھی تو کم سے کم بیٹھنے کی ویوستھا تو کرتی, کیا بات دی تم نے کیا سوچا تھا تم نے, یہ تو کہی نہیں کہ ہمارے بغل میں اوپر آ کے بیٹھتا, اوپر چڑھ بھی نہیں سکتے تھے, اتنا اونچا اسٹیج تھا جیسے جی ٹیبل ہوتی نا ایسا, اور نیچے کوئی ویوستھا نہیں کری. تو بات تو ہم کھڑے رہیں گے اور تم بیٹھی بیٹھی رہو گی کیوں. اور وہ یہ کہنا ہے کہ ہم تو مہان ہیں, آریکا ہے نا, اور تم تو سادھارن گرست ہو. تو اس کے لیے انہوں نے یہ شبد بول دیا کہ ماتا ماتا, وہ ان کی بیٹی کے برابر تھے, کیوں یہ بھی کہہ سکتے تھے بیٹا ایم پار نہ پڑے, کہہ سکتے تھے نا کیوں. لیکن ان کے پد کے انکول ماتا جی کہلاتی ہیں نا, تو انہوں نے برابر ماتا شبد کا اپیوگ کیا. دیکھو ان مہاپرشوں کے جیون کی ایک ایک قدم سے ہم کو کچھ سیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اب ایسا ہو جائے گا تو ہم کیا کریں, کیا کریں گے, ہم کو کیا کرنا ہے, کیوں کرے گا تو کچھ کچھ نہیں کرنا ہے. ہم تو شانتی سے بھگوان کے درشن کرنے گئے ہیں اور درشن کر کے لوٹ آئیں گے, کیوں آپ کا پروچن نہیں ہونے دیں گے تو نہیں کریں گے, ہو گیا کیوں. اور کیا کریں گے, سمجھ گئے نا آپ, کتنا سیدھا سرل راستہ ہے. دیکھو ابھی اپنا پڑھتے ہیں جو ان کی اٹپٹی بھاشا کا ارتھ ہے, کیسا کرتے ہیں امرتنداچاری, کیسے ہمارے سواچاری کرتے ہیں. دیکھو پہلے تو یہ سمجھ لے لو کہ پرتیاخان اور پرتیکرمن کیا چیز ہے. ابھی تو ہم یہی نہیں جانتے, ہم تو سمجھتے ہیں وہ کیا جاتا ہے, کچھ ایسا ہوتا ہے جو مندر میں بیٹھ کے کرتے ہیں اور پراکرت بھاشا میں ایک پنڈت بولتا رہتا ہے اور سب لوگ سنتے رہتے ہیں آڑم تاڑم کچھ, وہ اس کو پرتیکرمن کہتے ہیں, اسی کو پرتیاخان کہتے ہیں. ابھی تک تو ہم سب لوگ یہی جانتے ہیں نا. مگر بھوت کال سمبندی دوشوں کا پریمارجن پرتیکرمن ہے, اور بھوشیہ میں دوشوں کا نہیں ہونے دینے کا سنکلپ وہ پرتیاخان ہے. پرتیکرمن کا نہیں ہونا اپرتیکرمن ہے, वो प्रत्याख्यान का नहीं होना अप्रत्याख्यान है। ये जो प्रत्याख्यानावरण कर्म है अप्रत्याख्यानावरण कर्म है उसमें भी समझते हो कुछ, तो वो कषाएं होती है ना चार प्रकार की, प्रत्याख्यान अनंतानुमंदी संजुलन है ना। लेकिन मैं पूछता हूं कि चार प्रकार की कषाएं होती हैं तो एक तो अनंतानुमंदी और एक संजुलन, और दोनों में प्रत्याख्यानावरण अप्रत्याख्यानावरण क्यों लिखा? इनमें भी आवरण आवरण लिखते कि उनको भी नहीं लिखते। यह ज्ञानावरण वो दर्शनावरण वो मोहिनीयावरण नहीं है, वो मोहिनी है, वेदनी है, वेदनीयावरण नहीं है। इसमें क्या है? नाम है कि किसी के मन चंद लगता है, किसी के मन लाल लगता है, क्यों? कोई रतन चंद कहता है, कोई रतन लाल कहता है, उसमें क्या है? अरे है ज्ञान, ज्ञान और दर्शन पर आवरण होता है, समझे ना, इसलिए वो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म है। ऐसे ही प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान पर आवरण होता है, इसलिए वो प्रत्याख्यानावरण और अप्रत्याख्यानावरण है। अनंतानुमंदी पे आवरण नहीं होता है, क्या करे? संजुलन पे आवरण नहीं कि हाँ है। आप जानते प्रत्याख्यान माने क्या है? त्याग। तो अप्रत्याख्यान माने क्या? अत्याग। अरे भाई उसमें क्यों घबराते हो? लेकिन ऐसा नहीं है। प्रत्याख्यान माने त्याग और अप्रत्याख्यान माने थोड़ा भी त्याग नहीं होना। आप समझे ना, अलग गया ना, तो आज दो अर्थों में लगाया जाता है और आज मेरा मेरे सारा व्याकरण ही पढ़ाने में जा रहा है ऐसा लगता है। क्या प्रत्याख्यान एक इज्जत अर्थ में, एक नेगेटिव अर्थ में। इन नए समास का प्रयोग होता है ना, समास होते हैं ना, इसमें एक तत्पुरुष नाम का समास होता है, तत्पुरुष समाज में समास में एक नए समास होता है, समझते जानते ना। तो कोई शब्द होता है तो ज्ञान ये शब्द है ना, अब इसमें हमने आ लगाया तो अज्ञान होगा ना, तो इस अज्ञान के दो अर्थ होते हैं कि ज्ञान नहीं होना और गलत ज्ञान होना, कम ज्ञान होना, ये भी इसके अर्थ होते हैं, समझ गए ना। सर्वासिद्धि पढ़ी है? हाथ उठाओ कितने लोगों ने पढ़ी है। क्या बात है तुम्हारी, कोई हाथ ही नहीं उठाते हैं, हाथों में लकवा लग गया क्या? उसमें आता है ना अनुदरा कन्या, क्यों? क्या? बिना पेट की कन्या, उदर माने पेट और अनुदरा माने बिना पेट की, तो बिना पेट की कन्या कहीं होती है तो उसका क्या अर्थ हुआ? छोटा पेट। तो छोटा पेट का मतलब क्या हुआ? कि तोंद नहीं निकली है, आप समझ गए ना, माने पतली कमर। अनुदरा कन्या का अर्थ होता है पतली कमर वाली, समझ गए आप? पूज्यपाद स्वामी ने दिया ये उदाहरण, तो हमने तो उसे 12 वर्ष की उम्र में पढ़ा था अनुदरा कन्या, समझ गए आप? तो ऐसे ही प्रत्याख्यान माने त्याग, तो जो कसाय त्याग नहीं होने दे उसका नाम है प्रत्याख्यान कसाय, और जो कसाय थोड़ा भी त्याग नहीं होने दे उसका नाम है अप्रत्याख्यान कसाय। अपन तो समझे कभी त्याग होने दे वो अप्रत्याख्यान है, ऐसा नहीं है। शांतिलाल जी समझ में आ रही बात क्या? क्या होगा आप लोगों की समझ में आ रही ना? प्रत्याख्यान माने त्याग, तो जो कसाय त्याग नहीं होने दे तो प्रत्याख्यानावरण है, वो त्याग नहीं होने दे। और अप्रत्याख्यान के जो थोड़ा भी त्याग नहीं होने दे उसका नाम है अप्रत्याख्यानावरण। इसलिए अनुवृत नहीं होने देती है अप्रत्याख्यानावरण कसाय, और महावित नहीं होने देती है प्रत्याख्या नारायण कसाय। इतना तो आप जानते हैं ना, तो वो क्यों आप समझ में आई ना, इन पर वो संयम को आवरित करती है इसलिए आवरण लगाया। वो संयम को आवरित करती है और संयम कैसा है, धीमी धीमी जलती है, वो किसी को रोकती ही नहीं है, धीमी धीमी जलती रहती है संज्वलन। अभी आग बुझी नहीं है, वो जल रही है, समझ रहे संज्वलन। तो ये कहते हैं कि अभी ये प्रत्याख्यान की बात नहीं, अप्रत्याख्यान की बात है। अब ये जो तीन चीजें होती हैं, ये दो ही लिखी इसमें होती, तीन है, कौन कौन, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान। भूतकाल के जो गलतियां हमसे हो गई हों उनकी माफी मांगना, माने वहां से लौट के आना। अब भी तो हो ही गई, लौटे क्या, लौट कैसे सकते हैं भाई, भूतकाल की जो गलतियां हो गई वो तो काल ही निकल गया। तो उनके लिए पछतावा, माफी मांगना, इसको बोलते हैं प्रतिक्रमण, समझ गया। और अब भविष्य में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, अभी हुई नहीं है ना, तो वहां माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन ऐसा संकल्प, ऐसी प्रतिज्ञा, उसका नाम क्या है, प्रत्याख्यान। तो भूतकाल की गलतियों का माफी मांगना और भविष्य में भी गलतियां नहीं होने का नाम प्रत्याख्यान, दो ही निपट गए। अब वर्तमान तो एक समय का था, उन्होंने छुट्टी कर दी। आलोचना कि वर्तमान में जो गलती हो रही उनके बारे में भी अपनों को दुखी होकर निषेध अपने चित्त में होना, क्योंकि अब तो वो भी वर्तमान तो भूत जैसा, ये हो ही गई ना, अब क्या करें, अब अपन पछताने के अलावा और क्या कर सकते हैं, बोलिए। तो अब दो चीजें समझ में आएंगी, प्रत्याख्यान और प्रतिक्रमण। तो वो कहते हैं कि जब अब इसके आगे की बात फिर कभी बताऊंगा। अब प्रतिक्रमण माने पुराने दोषों की माफी मांगना, और प्रत्याख्यान माने भविष्य में भी दोष नहीं करने देना। अब अप्रतिक्रमण माने पुराने दोषों की पछतावा नहीं होना, माफी नहीं मांगनी, समझ रहे। और प्रत्याख्यान माने भविष्य में ऐसे दोष नहीं करने का संकल्प नहीं लेना है। अब ये अप्रत्याख्यान और अप्रतिक्रमण का अर्थ समझ में आ गया। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्रतिक्रमण माने माफी मांग लेना और प्रत्याख्यान माने भविष्य के लिए संकल्प करना कि मैं नहीं करूंगा। एक आगे एक और बात है, वो आचार्य कहते हैं कि यत्र प्रतिक्रमण में विष प्रणीता, कि जिस जहां शास्त्रों में प्रतिक्रमण को भी जहर कहा हो वहां अप्रतिक्रमण अमृत कैसे हो जाएगा, है मोक्ष अधिकार के अंत में आएगी वो बातें। लेकिन अभी बता देता हूं मैं आपको, तो वो तीसरी चीज क्या है, वो ये कहते हैं कि गलती करना और माफी नहीं मांगना ये है अप्रतिक्रमण। वो गलती करके माफी मांग लेना वो है प्रतिक्रमण। अब वो कहते हैं एक तीसरी अवस्था होती है, वो क्या, कि गलती जीवन में होना ही नहीं, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिक्रमण कहेंगे कि अप्रतिक्रमण, समझ में आया क्यों नरेश जी, अभी गलती हुई नहीं, भगवान आत्मा आत्मा में लीन है, अब उससे कोई गलती हुई नहीं है, शुद्धोपयोग में लीन है, अब वो क्या प्रतिक्रमण करे, वो क्या प्रत्याख्यान करे। वो तीसरी असली भूमिका है मोक्ष अधिकार में कहेंगे, इसके आगे ही आने वाला है वो अधिकार, बंद अधिकार चल रहा है कि असली चीज तो वो है, लेकिन माफी मांगना माने प्रतिक्रमण करना ये दुर्भाग्य है, समझना, और प्रतिक्रमण नहीं करना ये महादुर्भाग्य है, अप्रतिक्रमण महादुर्भाग्य है और अप्रतिक्रमण महान धर्म भी है, और दोनों के नाम है अप्रतिक्रमण, समझ लेना। क्यों लक्ष्मी, कुछ समझ में आया या नहीं आया? क्यों कि वो तो एक में तो गलती की और माफी नहीं मांगी तो महाअपराध हो गया ना, और गलती की और माफी मांग ली तो छोटा अपराध हुआ, क्यों गलती हुई थी ना, उसे निरपराध हम कैसे कहेंगे। और लेकिन गलती ही नहीं हुई इसलिए माफी भी नहीं मांगी, तो ये तो महान अच्छी दशा है ना। तो वो कहते हैं कि जहां पर हमने प्रतिक्रमण माने माफी मांगने को भी जहर कहा हो, तो वहां अपराध करके माफी नहीं मांगना वो अमृत कैसे होगा। तो तुम तो अमृत कह रहे हो, उसे अमृत कलश किसको कि वो तीसरी जो अप्रतिक्रमण है वो तो अलग तरह का है, उसमें तो गलती ही नहीं हुई हमसे ऐसा है। अभी यहां उसकी चर्चा नहीं है, अभी यहां तीसरे की नहीं दो की चर्चा है, कौन कौन सी गलतियां हुई हैं और उनकी माफी मांगना। गलतियां हुई हैं उसका नाम अप्रतिक्रमण, और माफी मांगना माने प्रतिक्रमण, और भविष्य में गलती नहीं करने का संकल्प माने प्रत्याख्यान, और भविष्य में संकल्प नहीं लेना माने अप्रत्याख्यान, समझ गया। अब ये प्रतिक्रमण क्या है, इस शब्दों की रचना पर थोड़ी विचार कर लेते हैं। अरे बहुत टाइम कितना हो गया, अब बीच में तो नहीं छोड़ सकता। ये प्रतिक्रमण देखो क्रमति है ना, आक्रमति प्रतिक्रमति, जानते समझिए ना, गच्छति आगच्छति प्रत्यागच्छति, ये शब्द शब्द सुने होंगे ना। तो ये जो शब्दों के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय बोलते हैं, और जो शब्दों के शुरू में लगते हैं उन्हें उपसर्ग बोलते हैं। शब्दों पे भी उपसर्ग आते हैं, अगले मुनिराजों पे नहीं आते हैं। तो कहते उपसर्ग का क्या काम है, उपसर्गेण धात्वर्थो बलात् अन्यत्र नीयते। उपसर्गों के द्वारा धातु का अर्थ जबरदस्ती दूसरी जगह लिया ले जाते हैं। अब गच्छति माने तो जाना होता है, अब गच्छति माने जाना होता है, तो आ उपसर्ग लगाया तो उसका अर्थ आना हो जाता है, आगच्छति। आ लगा दिया, अब उसमें प्रति और लगा दो, एक उपसर्ग और लगा दो, तो प्रत्यागच्छति हो जाएगा, उसका अर्थ लौटना हो जाता है। अब गच्छति में ना तो आ लगाओ और ना प्रति लगाओ, अब लगा दो अब गच्छति, तो उसका अर्थ जानना हो जाता है, समझिए ना। इस तरह उपसर्गों से शब्दों के अर्थ बदलते हैं। तो यह क्रमति माने जाना, फिर आक्रमति माने आना, और प्रत्याक्रमति माने लौटना। तो प्रतिक्रमण माने लौटना होता है, कि हम अपने आत्मा में से निकल के पाप में चले गए थे, अब हम वहां से लौट के आत्मा में आ गए, उसका नाम है प्रतिक्रमण, समझ गए आप। प्रतिक्रमण माने क्या, कि हमने ऐसी गलती की थी, अब हम गलती नहीं, हमने गलती की माफी मांग ली तो लौट के आ गए ना, और फिर नई गलती का करने का संकल्प कर लिया, भविष्य की दृष्टि से वो प्रत्याख्यान हो गया। तो वो कहते हैं प्रत्याख्यान भी दो तरह का होता है और प्रतिक्रमण भी दो तरह का होता है, एक द्रव्य प्रतिक्रमण एक भाव प्रतिक्रमण, एक द्रव्य प्रत्याख्यान एक भाव प्रतिक्रमण। यानी ये प्रतिक्रमण तेरे जीवन में हो जाए, ख्याल में आए ना, तो भगवान आत्मा पर का कर्ता नहीं होता है, अकारक हो जाता है। अभी तो इतने से ज्यादा नहीं बढ़ूंगा, आगे कल बताऊंगा और विस्तार से कैसे हो जाता है। इसे आप भी समझ में आ गई ना, कि जो पाप उसने किए थे मोहराग देश पाप है, अब उनसे वो प्रत्याक्रमण हो गया, भविष्य में नहीं करने की बात आ गई, तो वो अकारक हो गया आत्मा, अप्रतिक्रमण रह गया तो वो करता हो जाएगा, समझे ना। वो कैसे अकारक हो करता हो जाता है, थोड़ा नमूना बताया मैंने, अब बाकी की बात करें। کل مانے اگلا ویاخیان.